दो चार दस फल खा लिया और फल से फलों से एकदम बगीचा भर जाता था। कितना खाएंगे लोग, खा खा करके ना होते, कौवे भी होते थे सभी। आजकल लोग मारते हैं, मार करके खत्म करते हैं, वहां पर फसल भी नहीं होती है। आजकल पेड़ हैं किंतु उसमें फल नहीं लगते हैं, इसी कारण से ये सब पाप है। बंदरों को लेकर के पश्चिम देश में भेज रहे हैं और वहां पर उनको इंजेक्शन देकर के कितनी बुरी तरह से उसे मारते हैं, उनकी हाय लगती है। ऐसे ही देश नहीं, ये बिगड़ गया। इसलिए अपने बंधुओं को दे रहे हैं, घर में उधर का दरवाजा खोल दिया और आंगन वाला दरवाजा है उसको बंद थोड़ा सा कर दिया। जो सुधा जी आकर के देखने लगी, कहाँ गया कहाँ गया, बड़ा ठीक हो गया। देखा जो दधी जो पतली हो गई और चारों तरफ में फैल गई है, कहाँ गया? उनको एक सेकंड भी नहीं लगा, आप समझते, उसके पैर जो दधी में पड़े हुए थे उसका छाप कुछ लगा। देखा जी घर की तरफ में गया है, इसके पैर के छाप, इसलिए बस घर ही के तरफ में जाकर के धीरे से कपाट खुला और ऐसे देखा, अरे ये तो मंदिरों को खा रहा है, अपने भी खिला रहा है और दूसरों को खिला रहा है, अब खिला रहा है, ठीक है। मुस्कुराया, बड़ा चंट है, आज तक मुझे विश्वास नहीं था ये चोरी करता है, किंतु देखते ही ये चोरी करना तो अपने घर में भी अब करने लगा, मुझसे भी करने। यदि इस समय इसको शासन नहीं किया जाए भविष्यत में बड़ा धुरंधर होगा, इसलिए अभी शासन करना चाहिए। परब्रह्म को शासन करने जा रहे हैं। एक छोटा सा बेंत की लठिया उठा ली और उठा करके धीरे से जब उधर में देख रहा है, खा रहा है और कभी कभी सशंकित होकर के इधर देख रहा है उधर देख रहा है, उसी समय में झट कबाट खोला और झट कोने में चली गई, देख नहीं सका। थोड़ी देर के बाद में जब वो फिर उतारने लगा तो थोड़ी सी बहुत धीरे धीरे, जैसे बिल्ली पैर उठाती है, सूखे हुए पत्तों पर भी पैर पड़ेगा तो वो मालूम नहीं होगा, ऐसे धीरे से पैर उठाती है और धीरे से रखती है। इसलिए कृष्ण समझ न सके, ज्यों ही पकड़ने को चेष्टा की त्यों ही बंदर भगे और कौवे भगे। कृष्ण सोच रहे हैं ये कौवे क्यों भगे और ये बंदर क्यों भगे, जहां पीछे देखा तो मैया ऐसे पकड़े बट झट उधर के राजमार्ग पर कृष्ण भाग रहे हैं और पीछे से जसोदा जी दौड़ रही हैं। कालजवन जरासंध, इनकी तो बात ही क्या, बड़े बड़े योगी महात्मा लोग अपने निर्मल हृदय से भगवान को अपने हृदय में उनके चरण कमल को रखना चाहते और वही लोग नहीं पकड़ सकते हैं तो कालजवन इत्यादि क्या पकड़ेंगे, और जसोदामा उससे भी अधिक तीव्र गति से उनको कैसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में तू बड़ा ठीक हो, मारू मैया मुझे मत मार, मैंने क्या किया, तो तुमने खंड क्यों छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा, तू चोर है, मेरे कुल में चोर नहीं है। मैया तेरे कुल में, तेरे पिताजी के कुल में कोई चोर होगा, हमारे वंश में कोई चोर न, तुम देखो तो मन। फिर कृष्ण पीछे तरफ में सरक गए, तुमने ये बतलाओ सच सच, तुमने इस भांड को क्यों भांग तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, तब कैसे टूट गया? मैया मैं सच कहूं छोड़ दोगी तो? हाँ छोड़ गई, तो तुम जिस समय जा रही थी हमको रख करके और जल्दी मैं हड़बड़ा करके जा रही थी, तेरे पांव के इतने मोटे मोटे कड़ूले चांदी के और उसे जो ठोकर लगी तुम्हें तो पता नहीं, उस ठोकर से वो टूट गया, मैं क्या कर रहा, मेरा तो इसमें कुछ नहीं। तो देखो तो इतना झूठ, कैसी कैसी बुद्धि निकालता है। अच्छा ठीक, फिर जब उठाया बैंक फिर रोने लगे, ऐसे हाथ कर रहे हैं, एक हाथ तो उसने पकड़ रखा है जसोदा जी ने दाहिना हाथ और बाएं हाथ से इस प्रकार से कर रहे हैं, काजल मिल रहे हैं और एकदम यहाँ तक फैल रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और गले में त्रिवली पड़ी हुई है और साथ साथ में सुंदर सुंदर मोतियों की माला भी उनके बस्तक तक ऐसे झूल रही है। बड़ा सुहाना, रोना भी बहुत सुहाना, कृष्ण का रोना भी मधुर, चलना भी मधुर, हंसना भी मधुर, उनका सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम 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 सब। देवता लोग इस दृश्य को देखने के लिए ललचते हैं, भक्त लोग इन लीलाओं का ध्यान करते हैं। अब वो कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिए, जब रोने लगा थी तो गोपियों ने कहा ये क्यों इसे मार रही है, एक तो तुम्हारी इस अवस्था में पुत्र हुआ एक ही पुत्र और तुम इसको मार रही है, ये रो रहा है, छोड़ो छोड़ो, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको जब तक इसको सुधार नहीं दूंगी। फिर अच्छा अच्छा छोड़ो, अभी मारूंगा नहीं, तुम्हें बांध दूंगी। वो एक तुम खल, एक तुम चोर और वो महाचोर जो चोरी में सहायता करता है, तो तुम खल और वो उदूखल, उदूखल मैंने वो खल, दोनों को एक साथ में बांध करके दंड दूंगी। ऐसा कर करके अपने इस केस को छोड़ा, केस का बंधन का जो रेशमी फीता था उसको निकाल लिया, थोड़ा सा इतना बड़ा, और छोटी सी तो कमर लपेट करके कृष्ण को बांधना चाहे, किंतु वो दो अंगुल कम पड़ गए। फिर उन्होंने गोपी से कहा एक गोपी एक रस ले आओ तो घर से, तो वो खींच गई, हम करें तो मत बांधो, तो तू मानेगी नहीं। अच्छा तो बांधो, बस इतनी रस्सी पड़ी थी, बहुत सी गायों को जितना उठा सकी लेकर के पटक दिया, बांधो इसको, तुम देखिए कैसे बांधती। अरे ब्रह्मा ने इसको ललाट में बंधन ही नहीं लिखा और तू बांध देगी, ये कभी संभव नहीं। पर ये आज यदि सवेरे से शाम तक एक दिन दो दिन तीन दिन दस दिन बीस दिन होगा बिना बांधे इसे छोड़ूंगा नहीं, बांध करके ही छोड़ूंगी। रस्सी आने लग गई और गोपियां भी कौतुक देखने लगी, कोई ताली बजा रही है, कोई हंस रही है, आज देखें जो बेटा जीतता है कि मैया जीतती है, बेटा कह रहा है मैं जीतूं और मैया कह रही है मैं जीतूंगा। पास पड़ोस की सभी रस्सी लाई गई, जोड़ दिया गया, रस्सी मिलो लंबी हो गई, किंतु एक बार भी कृष्ण को बांध करके दिखल में बांधने में दो अंगुल को, ये दो अंगुल क्या है, जोग माया का भाव है। कृष्ण सोच रहे हैं कि मैया यदि बांध देगी तो मेरी सब बाल्य लीला समाप्त हो जाएगी, मेरी गोपियों मेरी दर्शन के लिए तड़प रही हैं, उनको दर्शन नहीं दे, घरों में चोरी करने बछड़े हमारा बिना देखे दूध नहीं पिएंगे और गाय न दूध देंगी, ये सब लीला है, मैं अपने सखाओं के साथ में कैसे खेलूं, इसलिए मैया मुझे मत बांध। जोग माया ने देख लिया, उन्होंने कहा जे मेरे प्रभु चाहते हैं कि मैया न बांध, इसलिए जोग माया के प्रभाव से वो दो अंगुल कम पड़ता गया, रस्सी लंबी होती गई, कृष्ण की सोने की कराधनी केवल द्वादश अंगुल बारह अंगुल ही बस रही, बड़ी नहीं, रस्सी बढ़ती गई किंतु वो बांध न सके, ये जोग माया। और भी एक आदमी यदि हजार साधन करके कृष्ण को अपने प्रेम से बांधना चाहे वो नहीं बांध सकता है कदापि, उनकी कृपा की भी जरूरत है। तो एक एक जो भगवान की कृपा है ये एक अंगुल, और साधकों की चेष्टा ये और एक अंगुल, ये दो अंगुल। हम चेष्टा भी करेंगे साथ साथ में ये भावना रहेगी ये कृष्ण की कृपा हो तब हम साधन भजन करके उनका दर्शन कर सकते हैं प्रेम से बस, हमारा साधन भजन भी एक अंगुल और उनकी कृपा ये दोनों मिल करके तो दो अंगुल बनते हैं। अब यशोदा माँ अपने परिश्रम से बांधना चाहती हैं किंतु कृष्ण सोच रहे हैं ये मैं न बांधूं। थोड़ी देर के बाद में दोपहर हो गया, किसी ने खाया नहीं, बांधते बांधते थोड़ी देर के बाद में कृष्ण ने देखा जो मैया के पसीने से बुंदों से वो बंधी हो और मुख लाल हो गया। मैं अपने छोटे से लाला को बांध नहीं सकती, विवश होकर के नारायण शरण हे नारायण मैं इतनी लज्जित हो जाऊं गोपियां मुझे तो रिझाएंगी जो अपने बेटे को नहीं बांध सकी, और उन लोगों ने मना किया था तभी मैं बांध रही, अब मैं अपना कैसे मुक्ति खाऊं। कृष्ण जी समझ गए, दृष्टा परिश्रमम, कृष्ण कृपया श्री समंगने, कृपा करके उनका उन्हें जोग माया की जो शक्ति इच्छा थी वो तरल होकर के बह गई, जोग माया वहां से हट गई और उनकी कृपा शक्ति वहां पर प्रादुर्भूत हुई। भगवान की जितनी भी शक्तियां समस्त शक्तियों में कृष्ण की जो कृपा शक्ति है ये प्रधान है। यदि कृष्ण कृपा कर दें तो सभी कुछ संभव हो सकता है। बस देखा जब यशोदा मैया अत्यंत परिश्रम से क्लांत हो गए, अब देख न सके, बरसाती साथ उनकी जो जोग माया की शक्ति थी हट गई और सब रस्सियां रह गई और कृपा से स्वयं एक जो उनके जुड़ा बांधने का जो रस्सी थी बस उसी रेशम की डोरी से ही वो बंध गए और उसी से बांध करके ओखल के साथ में बांध दिया और उनको रख। पर ये आप देख तो थोड़ी देर के बाद में बच्चों को कहा जैसे देखना इसकी रखवाली करना, मैं भी जाती हूँ फिर घर का काम करने के लिए। वो लौट करके आए किंतु चित्त तो वहीं रहा। क्या होगा, का क्या हुआ, और वो रही मैंने ऐसा क्यों बांधा उसको, अपने तरफ भी रही। नंद बाबा स्नान करने के लिए गए, कृष्ण ने सखाओं को बुलाया, सखा देकर के ताली बजाने, अब कन्हैया कैसा, और उसको ऐसे ऐसे कर करके रिझाने लग गए। कृष्ण तो रो रहे थे, अब इनका हंसता हुआ मुखड़ा देख करके ये भी कुछ मुस्कुराने लगे, दाग तो पड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में लोगों ने कहा कि इसको खोल दिया जाए, मदमन ने लल ने कहा जब मैं खोल दूं, जितना खोलता है किंतु खुलता नहीं। सब सखा लोग बारी बारी से चेष्टा की, बात्सल्य रस का बंधन सख्त से नहीं खुलेगा, बात्सल्य रस का दिया हुआ बंधन गांठ बात्सल्य, अथवा यदि गोपियां कोई राधा जी आती ना तो क्षण मात्र में उसको खोल सकती, किंतु उस समय वो अभी छोटी है, एकदम बालिका। कृष्ण से भी राधा जी 8 दिन 15 दिन छोटी हैं, और सखियां तो और भी छोटी हैं, कोई 2-2.5 वर्ष की छोटी हैं, इसलिए वो नहीं आ सकती। सखा लोग बहुत चेहरे नहीं खुला, सब लोगों ने उसको ढकेला। कृष्ण आगे आगे चले, उनको याद पड़ी नारद जी के अभिसंपात से जमलाजुन नामक दो वृक्ष होकर के गंधर्व लोग वहां पर पड़े हैं, उनका भी उद्धार करना है, इसलिए वहां पर खैसे खैसे ले चले और कृष्ण भी वहां पर चले। घर के बाहर में जबकि सब लोगों ने मिल करके उखल को बाहर दिया, किंतु वो दोनों वृक्षों की उसमें अटक गया। देखा जब बाहर नहीं जा रहा, कृष्ण बाहर उसमें पदे हुए हैं, खुद तो उस पार चले गए और वो उखल इस पार रह गए। सोचा जब कैसे चले, सखाओं ने बहुत चेष्टा की उखल को हटाने के लिए, नहीं हटा। तब कृष्ण ने थोड़ा सा जोर लगाया, जोर लगाते हैं उनके पैरों का जहां स्पर्श हुआ दोनों वृक्ष बहुत शब्द करते हुए और वो गिर गए। इतना जोरों से शब्द हुआ, सब लोगों ने देखा जी बिना आंधी के ये क्या हो गया, प्रलय हो गया न क्या। इतने नंद बाबा स्नान कर रहे थे ब्रह्मांड घाट में और वहां से वो दौड़े आए, सखा लोग और सब जगह से दौड़ा। कृष्ण वहीं पर जरा हो करके बैठ गए, सखा लोग भी डर गए, यशोदा जी तो सभी लोग वहां आए। नंद बाबा दौड़ करके आए, देखा अरे ये तो मर गया होता, किसने बांधा, जल्दी से आकर के कृष्ण को गोदी में ले लिया, धीरे धीरे गांठ खोलने लगे, बोले जी बेटा किसने बांधा। कृष्ण तो अब देख करके रोने लगे, बीच में बंद हो गया था, अब जोर से रोने लग गए। जब रोने लगे तो मैं गया किसने बांधा, बतलाओ तो, आज मैं जिसको उसको दंड दूंगा। कृष्ण ने ऐसे कहते मैया, मैया ने बांधा, अच्छा तू इतनी निष्ठुर हो गई, मैं तो जानता था जो बहुत कोमल से रहती है, तुम्हें उसने बांधा। धीरे धीरे खोला किसने, तो बाबा ठीक मिश्री या लड्डू के गुड़ के लड्डू पड़े थे, पॉकेट से निकाल करके कृष्ण को। यशोदा जी देख रहे हैं, सब ब्रजवासी लोग देख रहे हैं, यशोदा जी तो एकदम काट पत्थर की भांति हो गए। यदि ये मर गया होता तो नंद बाबा बिगड़ गए हैं, मैं रुकर अब क्या होगा।
नंद बाबा ने कृष्ण को, बलदेव को यहाँ पर बिठाया और बिठा करके चले गए ब्रह्मांड घाट में स्नान कराया। अब तक 3-4 बज चुके हैं शाम, आज घर में रसोई नहीं बनी, सब लोग भूखे, नंद जी नहीं खाए, उपानंद जी नहीं पाए, कृष्ण बलदेव जी ने पाया नहीं, जसोदारोहिणी आज रसोई नहीं बनी। थोड़ी देर के बाद में घर आए, तब तक शाम हो गई। रोहिणी मैया और उपानंद जी की पत्नी ये सब मिलकर के काजे से जसोदा जी का बिना अब तड़प रही है तो मर जाएगी। कृष्ण को यदि नहीं ले आया जाए, और वो दरवाजे पर यहाँ पर पुरुष लोग बैठते हैं बैठक में वो लोग बैठे थे, उपानंद की पत्नी और रोहिणी मैया और सब गई वहां। कृष्ण अरे आ जाओ मेरी गोद में, चलो मैया की गोद में। कृष्ण जाऊ मैं नहीं जाऊं, अरे रहेगा कहाँ, नंद बाबा के यहाँ, बाबा के यहाँ, अरे दूध कहाँ से पिएगा, तो नंद बाबा मुझे मिश्री और धारोष्ण गैया का दूध पिला देंगे, सोएगा कहाँ, तो बाबा के गोदी में खेलेगा किसके साथ, दाऊ भैया के साथ में। बाई चांस उस दिन दाऊ भैया नहीं थे, दाऊ भैया चले गए थे निमंत्रण में अपनी मैया के साथ, नंद उनके उपानंद जी के। जब आए थे इनको भी बड़ा क्रोध हुआ था, जी किसने इसको बांधा, किंतु जब सुना जी मैया ने बांधा तो उनका होश भी दुरुस्त हो गया, जजोदा का मैया वो भी डर गए, कुछ नहीं कहा। तो आज बलदेव के साथ में खेलेंगे। तो उपानंद की पत्नी कहती हैं, यदि तेरी मैया जैसी आराम हो जाए तो, मैंने मर जाए तो, इतना सुनते ही अब कृष्ण से रहा ने मैया मैया कह करके हाथ ऐसा किया, रोहिणी मैया ने अपने गोद में उठा लिया। सब लोग रोने लगे, कृष्ण और जोर से रोने लगे, जसोदा मैया तो और जोर से रोने लगी, बैठी है जसोदा जी के गोदी में उसको देख, कृष्ण रोने लगे, जसोदा जी रोने लगे, रोहिणी रोने लगी, नंद बाबा भी रोने लग गए, सब समाज एकदम रोने लगे। इस प्रकार से कृष्ण ने सबको उसमें बिरह सागर में एक तरह निमज्जित कर दिया। थोड़ी देर के बाद में जब कुछ शांत हुआ, रोहिणी जी ने कुछ संक्षेप में रसोई बनाई और नंद बाबा को बुलाया गया, उपानंद जी आए, सब लोग आकर के उन लोगों को खिलाया और कृष्ण को बलराम की गोदी में लेकर के दाहिने तरफ में बलदेव और बाएं तरफ में कृष्ण लेकर के उनको खिलाया। इसके बाद में अपने थोड़ा सा खाया, इसके बाद में कृष्ण को और बलदेव को लेकर के रोहिणी मैया और जसोदा जी अपनी गोद में बैठ करके और सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से जसोदा को भी खिलाया। इस प्रकार से ये दामोदर लीला दामोदर बंधन, कृष्ण को कोई वशीभूत नहीं कर सकता, केवल प्रेम के द्वारा ही उनको वशीभूत किया जा सकता है, इसलिए ये दामोदर बंधन। दामोदर इसलिए भी कहा जाता है कि कृष्ण अंतर्ध्यान होने पर गोपियों ने कृष्ण के पीताम्बर से गोपियों के अंचल को बांध रखा था, जैसे कि कृष्ण छोड़ करके न जाए, इसलिए या राधा जी ने ही अपने प्रेम से कृष्ण को बांध दिया, ललिता जी ने बांध दिया डोरी से राधा जी के साथ में, जे कहां भाग करके जाए, इसलिए वो राधा दामोदर हैं, दामोदर मास में उनकी पूजा होती है। इस तरह से ऐसे ऐसे सुंदर लीलाओं को वर्णन करते हैं शुभानंद ब्रह्मचारी जी। अब इसके बाद की कथा को कहेंगे, हमने बहुत कुछ समय ले लिया, बीच बीच में ऐसे कभी कभी समय ले लिया, पंथा कल्प राधा रमन हरि गोविंद
के लीला चरित्र को हम लोग सुन रहे हैं। बाल्य लीलाएं समाप्त हुई है। अब हम लोग उनके पौगंड लीला का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बत्तासुर का वध और इसके बाद में भिन्नकासुर का वध इत्यादि हुआ। हम लोग के भजन में सबसे पहले बाधा है अज्ञानता का। अज्ञानता होती है अपने संबंध में, भगवान के संबंध में, उनके भजन के संबंध में, क्या नहीं करना चाहिए इसके संबंध में बहुत सी अज्ञानताएं। तो हम लोग, हमारे आराध्य कौन है, मैं कौन हूं, कैसे उनकी आराधना करनी चाहिए, ये सबका ज्ञान नहीं होने से ही भगवान का शुद्ध रूप से भजन नहीं हो पाता। इसको दूर कर सकते हैं केवल मात्र गुरु। जिनको कोई गुरु नहीं है और वो भी वैष्णव भक्त गुरु नहीं है, वो जितना ही शास्त्रों को जानने वाले हैं, जितने बड़े भारी विद्वान हों, जितने शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, यदि वैष्णव भक्त गुरु नहीं है तो वो अज्ञानता उनकी रहती है। बिना गुरुदेव के अज्ञानता दूर नहीं होती। गुरु भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक कर्मी गुरु होते हैं, जैसे आंख बंद करके मत सुनिए, आंख खोल करके सुने। आंख बंद करेंगे तो कान भी बंद हो जाता है, दोनों एक साथ में बंद होते हैं। बीच में डिस्टर्ब मत करो, खोल करके सुनिए। जहां आंख बंद होगी कान भी बंद हो जाएगा, कान बंद हो जाएगा तो आलस्य आ जाएगा, आलस्य आने से नींद आ जाएगी। घर में बहुत परिश्रम करते हैं, एकादशी के दिन में हाथ वो काटते काटते सब्जी अमन फल, इसमें नींद नहीं आएगी। आज यहाँ हरि कथा आरंभ होगी तो आराम से नींद आती है, इसलिए आंख बंद मत कर। तो मैं क्या बतला रहा था, गुरु कर्मी एक गुरु होता है। कर्मी गुरु किसको कहते हैं, जैसे एकलव्य था, उसको धनु विद्या सीखनी, ये कर्मी गुरु हैं। स्कूल में, पाठशाला में आजकल निरीश्वर शिक्षाएं सीखती हैं, ये सब कर्मी गुरु हैं। संसार की कोई भी चीज सीखने के लिए जिसको हम गुरु बनाते हैं वो सब कर्मी गुरु। एक कामान यहाँ पर जो एका चलाता है, वो घोड़े घोड़ा गाड़ी
तांगा तांगा
तांगा, वो भी गुरु कहता है, ये गुरु मेरे हैं। ये सब कर्मी गुरु कहलाते हैं। जिस समय में एकलव्य द्रोणाचार्य के पास में गए, द्रोणाचार्य तो गुरु ठीक थे, उन्होंने उसे पूछा, भाई तुम कौन सा वंश का है, कैसा है, अपने वंश का जब परिचय दिया तो इन्होंने कहा, जी एक बात करो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम जगत का ध्वंस करेगा सीख करके, तुम्हारे अंदर में ईर्ष्या द्वेष है, तुम पांडवों का बराबरी करना चाहता है, अर्जुन को तुम परास्त करना चाहता है, इसलिए जहां पर कि द्वेष हिंसा है ऐसे लोगों को मैं शिष्य नहीं बनाता। किंतु उसने ठान लिया कि तो हम तो इन्हीं को गुरु करें, इसलिए उनके मूर्ति जैसा ही एक मट्टी की मूर्ति वन में बना लिया और उसी को लक्ष्य करके उनको प्रणाम करता, पूजा करता, और उन्हीं को गुरु मान करके धनुष बाण सिखलाना सीखते सीखते बहुत प्रवीण हो गया। एक दिन अर्जुन इत्यादि सब अपने शिष्यों को लेकर के द्रोणाचार्य वहां पर पधारे। उन्होंने देखा उनके साथ में एक कुत्ता था। कुत्ते ने तो दूर से उसको देख लिया भीम को और वो भौंकने लगा और बहुत दूर से ये लोग देख नहीं रहे किंतु वहीं दूर से शब्द सुन करके कुत्ते का भौंकना सुन करके और वहीं से बाण मारा कि उसके कहीं भी नहीं लगा। साथ ही साथ जो भौंक रहा था वो भौंकना बंद हो गया, एकदम बाण उसके अंदर में भर गए। ऐसे हाथ लवभाव से काम किया, लवभाव से बड़ी सफाई और बड़ी फुर्ती के साथ, कहीं खरोंच नहीं आई। इन लोगों ने कहा अरे ये क्या, इधर सुनो इधर सुनो, कहीं खरोंच नहीं आई और उसका मुख बंद हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा जैसे ये कोई मालूम होता है बाण चलाने वाला कोई बहुत अच्छा सिद्ध है, जिधर से बाण आ रहा था उसी तरफ में वो चले। थोड़ी देर के बाद में देखा जो एकलव्य वहां पर खड़ा था धनुष बाण लेकर, तू कौन है? मेरा नाम एकलव्य है, तुमने बाण चलाया वो? तो हाँ मैं, बहुत सफाई के साथ। तुम्हारा गुरु कौन है? तो गुरु हमारे आप ही द्रोणाचार्य। अरे तो मैंने तो तुमको सिखलाया नहीं गुरुजी, मैंने आपकी मूर्ति स्थापित की और उसी से सीख रहा हूँ, आपने तो मुझे शिक्षा नहीं दिया किंतु आपकी मूर्ति से मैं सीख रहा हूँ। मैं कहा जी साहब तो बहुत तुम प्रवीण हो गया, अब तो मुझे दक्षिणा कुछ दो। कहे गुरु जी आप जो दक्षिणा मांगेंगे दे दें। बस साथ ही साथ अजय क्या दक्षिणा चाहिए? तुम अपना दाहिना हाथ के इस अंगूठे को काट करके दे दो। ऐसे बाण पकड़ा जाता है ना, ये अंगूठा नहीं रहेगा तो बाण ऐसे कैसे चलाएंगे, ऐसे नहीं चल सकता, इसलिए अंगूठा ये तो महाजगत का ये विनाश करेगा, ये ऐसा सीख लिया। बस अंगूठा मांगा, साथ ही साथ तलवार से काट करके उनको दे दिया। अजय ठीक देखो कैसी गुरु भक्ति, किंतु शास्त्रकारों ने कहा ये गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के इच्छा अनुसार उपदेश अनुसार चले तो उसको कहते हैं शिष्य। जो अपने गुरु की बात नहीं मानता उसको शिष्य नहीं कहते। उन्होंने उसको शिक्षा देना नहीं चाहा था, वो आठ के साथ में खेलने जा रहा था और पाप में निमग्न होकर के और नरक जाएगा, लोगों के साथ में वो विनाश करेगा, उसके विनाश को बंद करके उसको बचाना चाहते थे किंतु नहीं। पीछे से क्या हुआ, पीछे से एकलव्य कृष्ण का अर्जुन का विरोध किया और उनसे युद्ध किया, कृष्ण ने चक्र से उसका सिर काट दिया। इसलिए एकलव्य का जो गुरु करना है, गुरु कर्ण है, ये कर्मियों का गुरु कर्ण है, इससे परमार्थ का कोई भी संबंध नहीं और ये गुरु है ही नहीं। एक शिष्य और है और एक गुरु और है, कर्ण था वो गया द्रोणाचार्य के यहाँ। आप हमको भी जैसे अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं मुझको भी दी, तुम किसका बेटा है? तो मैं राधेश
राधेय,
राधेय का पुत्र। राधेय कौन है?
अधिरथ।
तो अधिरथ नाम का एक सुत पुत्र था, वो रथ चलाता था। नहीं मैं वंश देखना चाहता हूँ कि ऊंचे वंश का है कि नहीं, उसमें सहिष्णुता है कि नहीं, उसमें दया है कि नहीं, उसमें सत्यवादिता है कि नहीं। भाई तुमको नहीं देता, वो चला गया। मैं अर्जुन को किसी न किसी प्रकार से जरूर नीचा दिखाऊंगा और उसको मारूंगा। इसलिए वो परशुराम के पास गया। परशुराम जी से जाकर के बोला बड़ा सुंदर सुकांत कुंती का पुत्र, तो ले जाकर तो उनको प्रणाम किया। परशुराम जी ने पूछा क्या चाहते हो? मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ और आपकी जितनी भी विद्याएं, शस्त्र की विद्याएं, पारमार्थिक विद्याएं, सब कुछ को मैं लेना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है,
तुम्हारा कुल का परिचय क्या है? तो मैं ब्राह्मण बालक हूँ। पिता का नाम क्या है? ब्राह्मण का एक पिता का नाम, ऐसे ही ब्राह्मण का अमुक शर्मा नाम बतला दिए। जो ठीक है, जब तुम ब्राह्मण का लड़का है, तुम्हारे पिताजी का नाम बतला रहा है, तो ठीक है, मैं तुमको शस्त्र विद्या देता हूँ। मैं दूसरों को नहीं देता, ब्राह्मण बालकों को ही दिया करता हूँ, क्योंकि उनमें सहिष्णुता होती है। ये ठीक है। तीन चार वर्ष वहां रहा और उन्होंने खूब अच्छी तरह से उसे समस्त धनुष बाण सिखलाए और शास्त्रों का तात्पर्य भी उसको बतलाया। जब वो सीखना उसका जब परीक्षा ली और पूर्ण हो गया तो अर्जुन से भी अधिक धनुर्धर हुआ, किंतु अर्जुन में जो सहिष्णुता है वो कहां से उसमें आएगी? और गुण उसमें नहीं थे। जब वो पूरा सीख लिया तो उन्होंने कहा, जैसे इसको सचमुच में मैंने शिक्षा तो दे दी, किंतु ये योग्य शिष्य है कि नहीं जरा देखूं तो, मुझे भूल हो गई, पहले मैंने परखा नहीं, अब जरा परखूं। बस जानबूझ करके उसके गोदी में अपना सिर रख दिया और वहीं पर थोड़ा सा लेट गए, नींद सी आ गई। और वो तो भगवत अवतार हैं, उन्होंने ऐसी प्रेरणा की, एक लाल कीड़ा
वज्रकीट
वो निकल करके और उनके पैरों में छेद करने लग गया। वो जिसके पैर ऊपर में रखा था, उन्होंने पैर शिव रखा था, तो कर्ण का ये जन्हे में वो लाल कीड़ा वज्रकीट छेद करने लग गया, इस पार से छेद करके उस पार निकल गया, रक्त की धारा बह निकली और उनके सिर में जब लगा, अरे ये क्या हुआ, उनकी नींद खुली, देखा तो एकदम लहूलुहान हो गया है। बेटा ये क्या हुआ, तो आप तो सो रहे थे, एक कीड़ा हमको यहाँ पर काटने लगा, हमने देखा जी ये कीड़े को हटाऊं तो अब पैर हिल जाएगा, आप उठ जाएंगे, इसलिए मैंने कीड़े को हटाया नहीं, इसलिए काट करके इधर में निकल गया और रक्त बहने लगा। अरे तू बता तो, ठीक बता, अभी नहीं बतलाएगा शस्त्र, अभी तुमको अभी संपात से जला करके भस्म कर दूंगा, तू किसके बेटा है, ठीक ठीक बतलाओ, तुम ऐसा मालूम है तुम क्षत्रिय है। तो हाथ करके तुम कांपने लगा, कहीं हाथ का सूत में क्षत्रिय बात, किसका बेटा है, राधे राधे का तू बेटा नहीं है, तो जरूर किसी क्षत्रिय का बेटा है। मैं समझ गया, ध्यान लगाया, देखा रही ये तो कुंती का पुत्र है। अरे जाओ, तुमने हमसे झूठ बोला और झूठ बोल करके सारी विद्याएं ले ली, जिस समय समय पड़ेगा उस समय सारी विद्याएं तुम्हारी भूल जाएगी, कोई भी विद्या काम में नहीं आएगी। अभी एक शिष्य और गुरु हैं, गुरु तो ठीक हैं परशुराम जी, जगत गुरु हैं, किंतु ये उनको झूठ बोल करके पहले ही से आरंभ किया, इसलिए विद्या काम नहीं आई। ऐसे गुरु और शिष्य से भी काम नहीं चलता, इसमें परमार्थ नहीं है, इसलिए ऐसे गुरु करने वाले हैं ये भी। एक गुरु शिष्य का हम और देखते हैं, एक शूद्र का लड़का था, शंकर जी की उपासना करता था, ये रामचरितमानस की कथा है, और वो फिर आंख बंद मत कीजिए, आंख खोल करके, तो वो शंकर जी की पूजा करता, दैववश से उनको एक ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण से भेंट हो गई, उन्होंने उससे दीक्षा ली, उनको भगवान राम का मंत्र दिया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन वो पूजा कर रहा था शंकर जी की, उन्होंने कहा जे बेटा शंकर जी को तू गुरु मान और उनके आराध्य राम हैं, शंकर जी के आराध्य, तू राम की भी, राम का नाम जो मंत्र दिया है उसको भी तुम कर तो तेरा कल्याण हुआ, शंकर जी को हनुमान जी को ये गुरु समझना चाहिए, उनकी कृपा से भगवान के चरणों में रति मति होती है, इसलिए तुम उनको प्रणाम करो, किंतु तुम आराध्य देव तुम राम को ही मानो, क्योंकि तुमको मैंने मंत्र दिया है। उसने कहा जो आप हमारे गुरु जी हमारे भगवान को निंदा कर रहे हैं, शंकर जी से बढ़कर के और कौन है, शंकर जी त्रिभुवन के प्रभु हैं, वो स्वयं परब्रह्म हैं, और गुरु जी ने कहा जी देखो ऐसा मत कहो, एकदम बिगड़ गया। उनको मारने के लिए दौड़ा और अरे तरे करके गाली गलौज कर ली। जब मारने के लिए दौड़ा इतने में वो शंकर जी की मूर्ति वहां जो पूजा कर रहा था उसमें से बहुत शंकर जी एकदम बड़े सुंदर रूप में निकले। अजय दोस्त तो हमारे सामने गुरु जी की निंदा कर रहा है, राम हमारे आराध्य हैं और तुमको तुम सम्मान नहीं देता, मेरी आराधना से केवल काम नहीं चलेगा। हमारी आराधना करके भी भगवान से जो द्रोह करता है राम और कृष्ण से, उन गुरुद्रोहियों को मैं देखना नहीं चाहता। जाओ तुम अभी करोड़ों जन्मों तक नरक में जाओ। जब ऐसा संपाद दिया तो गुरु जी ने उनके चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु आपने ये किया है, ये अज्ञानी जीव है इसलिए आप इस पर कृपा कीजिए। अब करोड़ों जन्म तो बहुत लग जाएगा, न जाने करोड़ों जन्म